देव आप सो गए, ये सुलाने के लिए राग है। राधा रानी के गांव हम आए हैं, आए कि नहीं, कहा हो आप, कुछ पता नहीं चल रहा कहा है, वन में तो है। बरसाना धाम की, कल सौभाग्य की बात कर रहे थे तो और सौभाग्य का उदय हुआ है, राधा रानी के गांव में रहने का मैं सौभाग्य। और वो राधा रानी का गांव केवल राधा रानी का ही नहीं है, और किसका है, हम सब का भी यही गांव है। कृष्ण का गांव भी दूर नहीं है यहाँ से, नंदगांव। हम लोग नंदगांव और बरसाने के कहाँ है, बीच में है, और केवल इन दो गांवों के बीच में ही नहीं, अगर हम उन दोनों के बीच में अगर रह सकते हैं, और केवल रहना ही नहीं है, रह के कुछ सेवा कर सकते हैं उनकी। ललिता विशाखा आदि जत क्या सखी वृंद अज्ञाय पाए सेवा चरणारविंद। ललिता विशाखा, कल तो ललिता का गांव देखा आपने, और अंजनौक में विशाखा गांव, और आज प्रातःकाल हम मैं विशाखा के गांव गया था। आपका विश्वास नहीं होगा लेकिन कई साक्षी है भक्त। अंजनौक नामक गांव है यहाँ से पूर्व दिशा में, दूर नहीं है। तो ललिता विशाखा उनकी आज्ञा से, अनुमति से हम किशोर किशोरी की सेवा कुछ हो जाए, हमसे भी कुछ सेवा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तकदीर बदल जाए। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो राधा रानी को हमारा नमस्कार। वृंदावन में जब कहते हैं नमस्कार, राधा रानी को नमस्कार, तो केवल बैठे बैठे सुनते नहीं, क्या करते हैं, क्या करते होंगे। राधा रानी को हमारा नमस्कार जब वक्ता कहेंगे, कथाकार कहेंगे, तो श्रोता क्या करते हैं, देखो ऐसे माता जी माथा करके दिखा रही है, झट से क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। मतलब प्रैक्टिकल हुआ, केवल सुन लिया और नमस्कार नमस्कार भाव के साथ, जो सुना वैसा ही भाव जब उत्पन्न होगा तो हमारा भी आत्मा झुकेगी राधा रानी के चरणों में। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, या जो मंगलाचरण में हम राधा रानी के गुण गाते हैं, राधा रानी कैसी है, तप्त कांचन गौरांगी, ये परिचय, इंट्रोडक्शन टू राधा रानी। राधा रानी का परिचय है इन कुछ ही शब्दों में, कैसी है राधा रानी, तप्त कांचन है, इसे उनके कांति का पता चलता है। तप्त कांचन गौरांगी, गौरांगी है, गौर वर्ण है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वरी कौन है, आपने क्या सोचा था कृष्ण है, नहीं, वृंदावन की ईश्वरी कौन है, राधा रानी है। जय राधे, राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी। वृषभानुसुता है राधा रानी, कैसी है वृषभानुसुता, वृषभानु नंदिनी है। वृषभानु कुंड को भी आप देखोगे, ये बरसाना, ये वृषभानुपुर है स्थान का सही नाम या ओरिजिनल संस्कृत भाषा का नाम क्या है, वृषभानुपुर। वृषभानु राजा की नगरी है, जिनकी पुत्री थी कहेंगे कि है कहेंगे, ये न कि पहले थी मर गई, अभी नहीं रही थी, इतिहास नहीं है, पास्ट हिस्ट्री नहीं है, राधा रानी थी और राधा रानी और राधा रानी रहेगी। जय राधे। राधा शाश्वत है अपने नित्य धाम में। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि, प्रणाम ऐसे राधा रानी को प्रणाम। हरि प्रिय, और ये राधा रानी है कैसी, हरि प्रिया है, हरि को प्रिय है। आप भी हरि को ऐसे प्रिय हो कि नहीं, आप भी हरि को प्रिय हो। लेकिन राधा रानी जितनी भगवान को प्रिय है और कोई इतना प्रिय नहीं है। ये ख्याति है राधा रानी की, राधा कृष्ण प्रणय आह्लादनी शक्ति रस्मात। और ये राधा कृष्ण का जो प्रणय है, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, ये प्रणय प्रणय केली 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 मतलब लीला, जल केली कई सारी केली तो प्रणय केली श्रृंगार माधुर्य लीला है। ये आह्लादनी शक्ति का खेल है। ये आह्लादनी शक्ति के साथ भगवान जब खेलते हैं तो उस खेल का नाम है प्रणय केली या माधुर्य रस। तो आह्लादनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति जब बनती है व्यक्ति, शक्ति व्यक्तित्व को धारण करती है। तो आह्लादनी शक्ति जब बनती है व्यक्ति, तो वह कौन बनती है, कौन बन गई, राधा रानी। एकात्मनावपि पुरभुवि देह भेदौ गतौ तौ। और राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है, एक ही है। लेकिन एक समय की बात है, भुवा भुवि पुरा देह भेदौ गतौ तौ। एकात्मा, एक ही आत्मा है राधा और कृष्ण, क्या है, एक ही आत्मा है। कभी कभी आप राधा कृष्ण का चित्र देखते हो, उनको अलग नहीं, आधे कृष्ण और आधी राधा रानी, वैसे एक ही है तो दो बन रहे हैं। देह भेदौ गतौ तौ, ऐसा घनिष्ठ संबंध है राधा और कृष्ण का। इसीलिए बरसाना वृषभानुपुर और नंदग्राम, इसको तो कहा पूर, पुरी नगरी, वृषभानु राजा की नगरी, और नंद बाबा का क्या ग्राम। नंद बाबा तो गांव में रहते हैं और वृषभानु पूर में नगरी में रहते हैं। सई महाभाव होय चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्यतार। राधा रानी रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, श्रोता है। चैतन्य महाप्रभु वक्ता बने हैं रामानंद राय, रामानंद राय कहते हैं चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्य तार। तार मतलब राधा रानी का कार्य क्या है, कृष्ण की वांछा की पूर्ति करती है। राधा रानी कृष्ण के लिए वांछा कल्पतरु, कैसी है, वांछा कल्पतरु, जननिवास या पंकजांगरी पता नहीं, दोनों में से कौन। कल मुझे कह रहे थे हमारी सारी इच्छा की पूर्ति यहाँ हो रही है ब्रज में। हमने कहा कि सर्वत्र वृक्ष है, कल्प वृक्ष, आपकी इच्छा पूर्ण हो रही है। या भक्त भी कैसे है, भक्त भी कैसे है, वांछा कल्प तरु है, भक्त भी और भक्तों की वांछा की पूर्ति करते हैं। और या राधा रानी कृष्ण की वांछा की पूर्ति, कृष्ण बड़े हैं सर्वोपरि है, तो तो उनकी वांछा भी बड़ी है, तो कृष्ण की वांछा को हम भी थोड़ा कुछ पूरा कर सकते हैं, हम क्षुद्र जीव। लेकिन हमने जो कुछ किया कृष्ण के वांछा पूर्ति के लिए, बड़ा ये प्रयास अधूरा रहेगा। हम क्षुद्र है, क्या कर सकते हैं, कितना कृष्ण को हम तृप्त कर सकते हैं। कृष्ण को तृप्त करने की अगर किसी में क्षमता है तो कौन, राधा रानी कृष्ण को पूरा सारे उनके वांछाओं की पूर्ति कर सकती है। हमारे साथ कृष्ण है तो शायद हमारी ओर भी उनका ध्यान होगा, लेकिन पूरा तो ध्यान हम आकृष्ट नहीं कर सकते, भगवान को व्यस्त नहीं रख सकते हम, या और भी कोई है तो। लेकिन राधा रानी है तो कृष्ण का ध्यान और कहीं नहीं जाता, पूरा चित्त राधा या कृष्ण के चित्त को आकर्षित करती है, चित्ताकर्षिणी, और वाइस वर्सा, राधा कृष्ण का चित्त आकर्षित करती है, कृष्ण राधा रानी के चित्त को आकर्षित करते हैं। महाभाव चिंतामणि राधा रस्वरूप ललितादि सखितार काय व्यवह रूप। तो महाभाव चिंतामणि राधा, राधा ठाकुरानी, क्या कर राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपिनी। ओके, राधा कैसी है, महाभाव स्वरूपिनी है, महाभाव का स्वरूप स्वरूपिनी राधा रानी ठाकुरानी, राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपिनी, महाभाव का वह स्वरूप है राधा ठाकुरानी। राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्धर टान समथिंग लाइक दैट, ताते सुगंधि देह उज्ज्वल वरान कान कारुण्यामृत धाराय स्नान प्रथम। तो बड़ा अद्भुत वर्णन कर रहे हैं राधा रानी का रामानंद राय। वो कहते हैं राधा रानी का क्या करती है, प्रथम स्नान करती है, किसे स्नान करती है, कारुण्यामृत धाराय स्नान प्रथम, कारुण्य अमृत की धारा, जलधारा नहीं, कारुण्य अमृत धारा में वो प्रथम स्नान करती है। और तारुण्यमृत धाराय स्नान मध्यम, फिर दूसरा स्नान, पहला स्नान किसमें हुआ, कारुण्यमृत धारा, और मानो वो धारा, मानो क्या, धारा जिस प्रकार के धाराओं से स्नान किया वैसी बनी है राधा रानी, करुणामयी राधा है। तो कारुण्य अमृत धारा, फिर तारुण्य, तारुण्य क्या होता है आप समझते, तारुण्य समझते आप लोग, कहाँ से हो, किस देश के हो आप, तारुण्य क्या होता है, यस युवती, तरुण तरुणी होता ना, तरुणी, तारुण्य यूथफुलनेस, उसकी धारा से राधा रानी द्वितीय स्नान करते, तारुण्यमृत धाराय स्नान मध्यम, और तीसरा स्नान करती है राधा रानी लावण्यमृत धाराय तभु तदुपरि स्नान, लावण्यमृत, लावण्य, लावण्या होती माता एक, लावण्या, लावण्य क्या होता है, सौंदर्य, सौंदर्य का एक लावण्य प्रकार है, सौंदर्य से जुड़ा हुआ, लावण्य अमृत की धारा में स्नान करती है। निज लज्जा श्याम पट्ट साटी परिधान, स्नान हुआ तो फिर साड़ी पहनती है राधा रानी, तो कैसी साड़ी पहनती है, निज लज्जा हाँ लज्जा, ये स्त्री का एक वैसे अलंकार आभूषण माना जाता है। आजकल की माताएं निर्लज्ज बन रही हो बात अलग है, हाँ आप समझ रहे ना, ये सब आपके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा कि आप जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु बैठे रहे, कोई भाव को प्रकट नहीं किया उन्होंने। अरे बाल आप दुखी हो, आपको देख के मुझे सुख हो रहा है। क्या हुआ, स्नान के उपरांत निज लज्जा श्याम पट्ट साड़ी परिधान, साड़ी पहनती है, किस वर्ण की साड़ी पहनती है, श्याम वर्ण की। जो कृष्ण का वर्ण कैसा है, कैसा है कृष्ण कैसे है, श्याम सुंदर घन श्याम है, तो जिस वर्ण के कृष्ण है उसी वर्ण की रंग की साड़ी राधा रानी पहनती है, और जो वर्ण जो रंग राधा रानी का है उसी रंग के वस्त्र कृष्ण पहनते, इसीलिए वो कहलाते क्या कहलाते, पीतांबर कहलाते हैं। राधा रानी नीलांबरी कहलाते, नीलांबरी नील अंबरी, अंबर मतलब वस्त्र, नीला नीले वस्त्र पहनती है राधा रानी, और पीले वस्त्र सुनहरे वस्त्र पहनते हैं श्री कृष्ण। इससे भी अपना एक दूसरों के प्रति जो स्नेह है उसको प्रकट कर रहे हैं, मैच कर रहा है। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन, और भी एक वस्त्र पहनती है और वो वस्त्र है अरुण वसन, लाल लालिमा है उसमें, तो सूर्योदय के समय जो सूर्य की कांति आभा उस वर्ण का दूसरा वस्त्र पहनती है, जिससे राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है। नीली साड़ी पहन के अपनी लज्जा लजीली राधा रानी लजीली, आप समझ तो गए, जो लज्जा करती है उसको क्या कहते हैं स्त्री को, शर्मीली, लजीली भी तो होगा ना कोई, लजीली हमने शब्द बनाया, तो शर्मीली राधा रानी अपना जो लज्जा है प्रकट करती है नीली साड़ी पहन के, तो अपना जो अनुराग है कृष्ण के प्रति स्नेह है उसको प्रकट करती है अरुण वसन, उसकी जो चोली है वो अरुण वर्ण की पहनती है। प्रणयमान कंचुक निकाय वक्ष आच्छादन, तो अपने वक्षस्थल को आच्छादित करती है और उस वस्त्र से कृष्ण के प्रति अपना प्रणय अपना स्नेह और साथ ही साथ अपना मान, मान राधा रानी का एक भाव है, मान करके बैठती है मानिनी, इसलिए राधा रानी को क्या कहते हैं, कहो मानिनी, मानिनी मान करके बैठती है। एक दिन आप मान सरोवर जाओगे परिक्रमा करते करते करते, मान सरोवर स्त्रियों में ये भी भाव पाया जाता है मान, आपने कभी किया कि नहीं मान, पुरुष भी करते कभी लेकिन स्त्री अधिक, फिर ऐसे से मानिनी को समझाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, पति देव को कहिए या, तो ये उनके लीला का एक बहुत बड़ा अंग है। राधा रानी जब मान करती है मानिनी बनती है तो उसके पहने हुए जो वस्त्र है एक से प्रणय कृष्ण के प्रति प्रणय और दूसरा मान व्यक्त होता है। सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन, तो सौंदर्य कुमकुम पहनती है, कुमकुम या कि ये सौंदर्य का लक्षण है, या सारे वस्त्र पहन लिए और फिर अंत में जब हम तिलक पहनते हैं तो कंप्लीट हो गया। तिलक पहनने से और भी सौंदर्य बढ़ता है। कुमकुम का पता नहीं लेकिन तिलक का पता है हमें। हाँ, स्नान किया, वस्त्र पहन लिए या फिर तिलक पहना तो फिर अच्छा लग रहा। तिलक फाइनल टच। तो स्त्रिया या राधा रानी कुमकुम सौंदर्य, सखी प्रणय चंदन, और चंदन लेपन भी होता है उसका, सखी के प्रति प्रणय या कृष्ण के प्रति अपने सखियों के प्रति। स्मित कांति कर्पूर तीन अंगी विलेपन, और कर्पूर का लेपन भी होता है। स्मित कांति, कांति या उसका हास्य उससे प्रकट होता है। कृष्णेर उज्ज्वल रस मृग मद भर, सई मृग मदे विचित्रित कलेवर। और तो ऐसे वस्त्र पहना हुआ राधा रानी का जो विग्रह है बड़ा अद्भुत है, विचित्र है, सारे सौंदर्य की खान है जो कृष्ण के चित्त को मोहित करता है। ऐसे राधा रानी की, ऐसे राधा रानी की। तो राधा रानी के गांव में है तो सोचा थोड़ा स्मरण करते हैं राधा रानी का। हो भी गया, ये नहीं कि अभी प्रारंभ कर रहे हैं जा रहे हैं, तो होता तो नहीं लेकिन क्या करे, मरने के लिए समय नहीं है, इतने बिजी चल रहे हैं हम। राधा रानी के गुण गाने के लिए भी समय नहीं है, या सारा समय से है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का स्मरण या कथा या गाथा। हम दिन भर यही है, राधा गिरिधारी की। तो गिरिधारी गिरिवरधारी, समय राधा रानी है। कल भी थोड़ा स्मरण किया, राधा रानी दूर नहीं थी जब कृष्ण उठाए पहाड़ को, राधा रानी को देख रहे थे। भगवान व्यस्त भी थे, पहाड़ उठाए, आपके सिर पर इतना बोझ उठा के रखा तो फिर आपके लिए देखना मुश्किल होगा। सोचना भी मुश्किल होता है जब कोई बहुत भारी वस्तु या कोई रखा है बोझा आपके सिर। लेकिन कृष्ण के लिए ये गोवर्धन पहाड़ को उठाया बहुत बड़ा मुश्किल कार्य था क्या कृष्ण के लिए? कैसा कार्य था? कार्य नहीं था, एक खेल था, खेल भगवान के लिए। पहाड़ को उठाना क्या है? खेल है। उस शुक शारिका ने कहा था, याद है आपको, शुक ने कहा था, मेरे कृष्ण के वीर्य को तो समझो, हे सारिका क्या समझती हो तुम, मेरे कन्हैया इतने बलवान है। वे क्या करते हैं गोवर्धन को? गेंद बनाते हैं, बॉल, और खेलते हैं। कभी कभी लोग ऐसा खेलते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते थे लेकिन वर्षा हो रही थी इसीलिए ऐसा करते जाएंगे तो फिर भीग जाएंगे सारे भक्त तो धारण किए थे। लेकिन कृष्ण के लिए ये खेल था। कौन से हाथ का खेल? बाएं हाथ का खेल, मतलब और भी आसान। दाहिने हाथ में ज़्यादा ताकत होती है, तो जो कमज़ोर हाथ, उस कमज़ोर हाथ से उठा लिया उन्होंने, और हथेली पर नहीं उठाया, पांचों उंगली पर उठाया, जो मजबूत उंगली या अंगूठा या उस पर नहीं उठाया, स्मॉल फिंगर, छोटा। और आप क्लोजअप देख सकते हो तो क्या दिखाई देगा आपको? उंगली पर भी उफ नहीं है, कहाँ है? नाखून के ऊपर। नाखून समझते हैं? ऐसा ही बैठा है ऊपर, कोई धूल का कण, आपके अंग पर कितने धूल के कण अब भी होंगे, आपको कोई चिंता नहीं है। तो एक कण गोवर्धन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भगवान धारण किए, भगवान के वीर्य का सामर्थ्य का एक नमूना है, सिंपल। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। मनुष्यों को भगवान दिखाना चाहते मैं कितना बलवान हूं, तो चलो मैं गोवर्धन, बाप रे बाप, कृष्ण ने पहाड़ उठाया, हम लोग पत्थर भी नहीं उठा सकते। फिर हम लोग हाँ यस यस मानना पड़ेगा, कृष्ण को मानना पड़ेगा, हम पत्थर नहीं उठा सकते। उन्होंने क्या उठाया, सारा पहाड़, सारे कई सारे पत्थर चट्टाने, और उसके ऊपर वृक्ष भी थे, कई पशु भी होंगे और कई पुकूर भी होंगे, सरोवर भी, सभी को यानी कि नीचे उतरो उतर जाओ थोड़ा बोझ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा उठा लिया। तो वह आज के दिन उठाया क्या भगवान ने पहाड़, इस प्रश्न से आपको सोचो, आज पहाड़ उठाया भगवान ने, कुछ कर हाँ कुछ ना, उसमें से जो भी है कहीं ना कहीं फिट होता हो। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। तो पहली पूजा किसने की थी, नंद बाबा की अध्यक्षता में हुई थी, सारे ब्रज के ब्रजवासी इकट्ठे हुए थे, और बहुत बड़ी गोवर्धन पूजा, और कृष्ण ने स्वयं नियमावली, ये करो ये करो ये करो ये करो, और क्या नहीं करो, इंद्र की पूजा नहीं करो, उसके बदले में क्या करो, गोवर्धन पूजा करो। तो सारी गाइडलाइन कृष्ण ने दी थी नंद बाबा और ब्रजवासियों को, उसके अनुसार आज पूजा हुई। केवल आरती नहीं उतारी, आरती के पहले क्या होता है मंदिर में, क्या होता है आरती के पहले, क्या होता है भोग लगता है कि नहीं, तो आज के दिन बहुत बड़ा भोग, गिरिराज को भोग। तो गिरिराज छोटे नहीं है, मोटे गिरिराज को मोटा भोग, वो भोग भी पहाड़ था, थाली में नहीं लाया, एक माता थाली में लेके आ रही है गिरिराज को भोग, वो तो उनके दांत के बीच में ऐसे कहीं अटक जाएगा, पेट में पहुंचेगा भी नहीं, हाँ थाली में लाई आप। तो गिरिराज को भोग जब खिला रहे थे, उसकी क्या शोभा और उसका क्या वर्णन, तो उसका दर्शन आप करोगे, थोड़ा सा एक झलक कैसा भोग खिलाया था, और पेट जब भर गया तो भगवान दांत साफ कर रहे थे, तो कैसे साफ किया, बाम्बू ले लिया उन्होंने, भगवान ने बाम्बू लेके क्लीनिंग में, बाम्बू पूरा का पूरा लंबा साफ कर रहे हैं, और फिर कहा था कि आप फिर खिलाओ, ब्राह्मणों की पूजा करो, गाय की पूजा करो, आज गोवर्धन पूजा ही नहीं है, ब्राह्मण और नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगथिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गोवर्धन पूजा के साथ भगवान ने ही कहा था, उस वक्त उनको भगवान कोई नहीं समझता था, छोटे बालक को कौन भगवान कहेगा, और भी कई सारे बालक थे, ये भी एक बालक तो हुआ, लेकिन उस दिन वैसे भगवत्ता, धीरे धीरे भगवत्ता देखेंगे, इस बालक की भगवत्ता को देखेंगे ब्रजवासी। तो पूजा हुई, फिर परिक्रमा भी हुई, परिक्रमा हुई तो परिक्रमा किसने किसने की, सभी ने की, इसमें परिक्रमा करने वाले कृष्ण और बलराम भी थे, कृष्ण और बलराम भी क्या कर रहे थे, परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, लेकिन छोटे बालक थे इसलिए उनको बैलगाड़ी में बिठाया था, जैसे आजकल लोग रिक्शा में बैठ के परिक्रमा करते हैं, तो कृष्ण बलराम से शायद सीखा होगा उन्होंने, तो परिक्रमा की, तो फिर लौटे फिर अपने अपने घर। सारी गोपियाँ भी वहाँ थी, राधा रानी भी वहाँ थी। तो जब सायंकाल को लौट रहे अपने अपने घर, तो गोपियों के लिए मुश्किल घर जाना, दिन भर साथ में थे, दर्शन था, कन्हैया भी थे। लेकिन अब वो वर्णन भी आता है राधा और गोपियों का विरह। फिर ब्रजवासी दूसरे दिन, तो ये प्रतिपदा हुई आज, प्रतिपदा आज क्या है, प्रतिपदा है, कार्तिक का दूसरा पक्ष आज प्रारंभ होता है। पहले शायद कृष्ण पक्ष चल रहा था और आज से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। इस पक्ष का पहला दिवस पूजा, फिर दूसरे दिन द्वितीय को सारे ब्रजवासी मथुरा गए, विश्राम घाट गए, और भाई बहन उन्होंने मिल के वहाँ जमुना में स्नान किया। सारे ब्रज के भाई और बहने, भाइयों और बहनों वहाँ सब पहुँच गए, और दोनों मिलके, भाई बहन मिलके वो स्नान कर रहे थे जमुना में। वहाँ भी भाई बहन का आपने दर्शन किया जमुना के तट पर। जब आप विश्राम घाट गए तो वहाँ दो भाइयों का दर्शन, एक भाई एक बहन का दर्शन किया। कई भाई बहन वहाँ आए होंगे उस दिन भी, लेकिन किसका दर्शन किया, यम और जमुना, ये भाई बहन है। सूर्य की पुत्र, सूर्य के पुत्र है यमराज, और सूर्य की पुत्री या सूर्य की कन्या है जमुना। तो जो भी वहाँ स्नान करते भाई बहन, तो उनकी रक्षा ये दो भाई बहन करते हैं, जमुना और यमराज उनकी रक्षा करते। तो सभी ब्रजवासी वहाँ पहुँचे थे, तो पूजा नहीं हुई प्रथमा प्रतिपदा के दिन। ये समाचार कहाँ पहुँच गया, इंद्रलोक, किसी ने फ़ोन किया होगा या SMS भेजा होगा, तो इंद्र आ गए, स्वयं नहीं आए, भेजा उन्होंने, या बादल भेजे, और खूब वर्षा प्रारंभ हुई, और सारे ब्रजवासी बहुत बड़ी परेशानी में, सर्वत्र वर्षा और सर्वत्र पानी पानी, बाढ़ आ गई। पहले तो नदी में बाढ़, फिर पानी पहुंच गया उनके गांव में, पानी पहुंच गया उनके घर में, पानी पहुंच गया, लोग छत पर चढ़ गए वहाँ पानी पहुंच गया, पेड़ पर चढ़े वहाँ पानी पहुंच रहा है। तो रक्षा के लिए सभी कहाँ पहुंच गए, कृष्ण के पास। गर्ग मुनि बताए थे, कोई समस्या है भविष्य में तो क्या करो, सर्व दुर्गानी, कोई विशेष कठिनाई है तो इस बालक के पास पहुंच जाओ, ये बालक आपकी रक्षा करेगा। तो सभी पहुंच गए कृष्ण के पास। फिर कृष्ण ने सोचा, अकेले ने सोचा, किसी की सलाह करने की जरूरत उनको नहीं, अब क्या किया जाए, सच अ बिग प्रॉब्लम, क्या, व्हाट टू डू नाउ। कृष्ण के लिए कोई समस्या नहीं है, तो झट से वो ओके, समझ गया मैं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उन्होंने सोचा कि ये समस्या तो गिरिराज के कारण है, तो चलो गिरिराज ही आपकी रक्षा करेगा, बताया तो नहीं, लेकिन पीछे पीछे गए तो उनको पता नहीं चला था कहाँ जा रहे हैं। या ओके, गॉट, हाँ पढ़ा मैंने। तो हुआ, तो जब गोवर्धन के पास पहुँचे तब भी पता नहीं चल रहा था कि रक्षा कैसे करेगा हमारी, कि सभी के लिए कोई छाता ऑर्डर करने जा रहा है, कि सभी के लिए बोट में बिठा के हमको कहीं दिल्ली आगरा तक पहुंचा देगा, क्या करेगा, क्या, किसी को पता नहीं था। तो सभी जब सोच ही रहे थे, तो सभी के आंखों के सामने कन्हैया ने क्या किया, गोवर्धन के नीचे अपना अंदर से हाथ, और जैसे हाथ लंबा हुआ उनका, जब अंदर डाल दिया हाथ, लंबा हो ही रहा था, और फिर उन्होंने उठा लिया, गोवर्धन को उठा लिया, जैसे वर्षा होने के बाद कुछ छाते उग आते, आपने अगर देख, गांव के आप लोग, गांव के होंगे आप, कंक्रीट के जंगल में छाते उगते नहीं है, लेकिन गांव में खेतों में छोटे छोटे छाते उगाते हैं, आपने देखे हाँ। तो छोटे बालक भी उस छाते को, उस छातों को आसानी से उठा सकते हैं, खेलते उसके साथ, उसको तोड़ते, उसको हाथ में लेते, नाचते हैं, छोटे छोटे छाते होते हैं। ऐसा वर्णन है कि भगवान ने उस गोवर्धन को वैसे ही उठाया, इतने आसानी से उठाया जैसे वर्षा के बाद जो उगने वाले छातों को, छाता गिर गया, छोटा बालक वो छाता उठाता है, ऐसा ही होता है इतना आकार का। तो कृष्ण ने उस गोवर्धन को उठाया, ओके व्हाट नेक्स्ट, तो कृष्ण कहा आ जाओ सब नीचे आ जाओ, इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ। तो सभी जीव कहा है, केवल पुरुष या स्त्रिया या बालक ही नहीं, गाय बछड़े वानर मयूर सारे जीव उस गोवर्धन का आश्रय, छत्र छाया का आश्रय लिए। तो किस दिन गोवर्धन उठाए भगवान, प्रथमा को पूजा हुई प्रतिपदा को, द्वितीया को भैया दूज कहते हैं, भैया दूज चलता है, उस दिन थे वहाँ मथुरा में, और तीसरे दिन तृतीया को भगवान गोवर्धन पहाड़ को उठाए। और कितने दिन उठा के रखे, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी और नवमी तक भगवान उस गोवर्धन पहाड़ को उठा के रखे, और तब तक वर्षा प्रयास रही इंद्र के, लेकिन इंद्र कोई बिगाड़ नहीं पाया। कृष्ण ने जब रक्षा की सभी की, गोवर्धन को उठा के, तो गोवर्धन को रखे हैं, और फिर इंद्र आए, कल हमने स्मरण किया था, शर्माए शर्मिंदे इंद्र, ऐरावत पर बैठ के, या जब यहाँ आए तो उतरे और रेंगते हुए गए, कृष्ण की क्षमा याचना उनके चरणों में उन्होंने की है और प्रार्थना भी की है, और कृष्ण का अभिषेक किए, स्वर्ग से जल लाया था, सुरभि गाय भी रखी थी, उनका दूध से फ्रेश मिल्क और जल से अभिषेक हुआ, और उस अभिषेक के जल दुग्ध और जल से कुंड भर गया, उस कुंड का नाम हो गया गोविंद कुंड, और उसी समय से कृष्ण का भी नाम हुआ गोविंद, कृष्ण बने गोविंद और कुंड हो गया गोविंद कुंड। एक दिन कथा हुई थी गोवर्धन के बगल में, तो ऐसे गिरिराज धरण की बड़ी शोभा है, बड़ी महान मधुर अद्भुत लीला है, जिस लीला में प्रवेश का आज का ये उत्सव हमें अवसर प्रदान करता है। तो कई सारे भक्त लगे हुए हैं, गोवर्धन बन रहा है और सब, कृष्ण को भी बना रहे, कृष्ण को बनाए कि नहीं, हाँ कृष्ण को भी बनाए, भक्त ने क्या किया, भक्तों ने कृष्ण को बनाया, गोवर्धन को बनाया। तो कृष्ण के आदेश अनुसार गोवर्धन पूजा होगी, गौ पूजा होगी, अभी गौ पूजा का समय, और आप सभी वैष्णव ब्राह्मण हो, आपकी भी पूजा आपकी भी सेवा होगी, प्रसाद से सेवा होगी, और भी कोई प्रीव।